आपको मालूम है प्रेरित काम की सीरीज में चल रहे हैं। पिछले इतवार को हमने प्रेरित 14 समाप्त किया था, आज हम प्रेरित का 15 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 35 पद तक हम वचन पर अध्ययन करेंगे। इसका मुख्य विषय यह है, विश्वास और अनुग्रह द्वारा ही उद्धार है। जब हम पिछले अध्याय में थे, हम देख रहे थे किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार फैलाया गया है, और पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा को समाप्त करता है। पहली मिशनरी यात्रा सुसमाचार प्रचार यात्रा 13 अध्याय से आरंभ होती है और विभिन्न स्थानों में होकर वो जाते हैं। 14 अध्याय में ये अपनी मिशनरी यात्रा को समाप्त करके फिर अंताकिया में वापस पहुंच जाते हैं, और हम बार बार देख रहे हैं कि यरूशलम से हटकर अंताकिया अब सुसमाचार का मुख्य केंद्र बन चुका है। लेकिन हम 15 अध्याय में आते हैं, इस सच से पहले हम देख रहे हैं सुसमाचार प्रचार हो रहा है, विरोध है, कठिनाई है, समस्या है, तरह तरह के बातें हम देख रहे हैं, तरह तरह के विचार के लोग पाए जा रहे हैं। फरीसियों का जीवन अलग दिखाई देता है, जो अपने आप को बहुत अधिक धर्म का पालन करने वाले देख रहे हैं उनका जीवन अलग दिखाई देता है, और इन सब कुछ पर हमने पिछले रविवार को विचार किया था। लेकिन सचमुच में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पर 15 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें इन नए विश्वासियों के मध्य में एक समस्या खड़ी हो गई है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसमें एक सभा के बारे में दिया गया है। 2 अध्याय, एक 15 अध्याय और एक 20 अध्याय कैसे अध्याय है, जहां पर अगुओं ने मिल करके कुछ खास बात पर विचार किया है। 15 अध्याय में एक समस्या को लेकर है और 20 अध्याय में अगुओं की अगुवाई को लेकर है कि किस प्रकार के अगुए होने चाहिए, वह बाद में देखेंगे। लेकिन समस्या क्या हो गई थी, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि विश्वास और अनुग्रह द्वारा ही उद्धार है, तो हम इन पदों को कुछ भागों में बांट सकते हैं। 15 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक पृष्ठभूमि है, 15 अध्याय 4 पद से लेकर 5 पद तक एक समस्या है, 6 पद में हम एक विशेष सभा को देख रहे हैं, 15 अध्याय 7 पद से लेकर फिर एक सभा है जो सार्वजनिक सभा है। इस सभा के अंदर पतरस खड़ा होकर उपदेश दे रहा है, पौलुस और बर्नबास उपदेश दे रहे हैं, याकूब उपदेश दे रहा है, और तब उसके बाद 15 अध्याय के 19 और 20 पद में कुछ निर्णय लिया जाता है, और तब उस निर्णय के पत्र को लोगों तक पहुंचाया जाता है। समस्या क्या थी, तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले से 3 पद तक मैं पहले पढ़ूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, जब तक मूसा की रीति के अनुसार तुम्हारा खतना ना हो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बर्नबास का उनके साथ मतभेद तथा वाद विवाद हुआ, तब भाइयों ने यह निश्चय किया कि पौलुस बर्नबास तथा उनमें से कुछ अन्य लोगों को इस समस्या के संबंध में प्रेतों और प्राचीनों के पास यरूशलम जाएं। अब यहाँ पर अंताकिया में कुछ लोग आ गए और वो कहने लगे कि ठीक है, लोग जो विश्वास कर रहे हैं, खास से अन्य जाति पृष्ठभूमि से लोग जो विश्वास में ला रहे हैं, उनके लिए अच्छा है कि पहले विश्वास करने के बाद पहले वो यहूदी बने, उनका खतना हो, और खतना के बाद फिर वो बपतिस्मा लेके मसीह बने। तो या फिर से वो जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर खतना अनिवार्य है, अभी भी उनके लिए जो व्यवस्था है अभी भी अनिवार्य है, खतना करना अभी भी अनिवार्य है। हम देखते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और उसे एक वंशज को तैयार किया, और उन्हें कहा ये वंशज जो ये पीढ़ी जो है वो मेरी कहलाएगी, और उनका ये कि अलग के लोग होंगे और उनका चिन्ह होगा कि उनके शरीर का खतना किया जाएगा, जो एक प्रकार से अलग के लोगों के चिन्हानी होगा। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया, अब प्रभु यीशु मसीह आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लुप्त करने के लिए नहीं लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और इसीलिए जब वो क्रूस पर थे और क्रूस पर जब वो अपने प्राणों को दे रहे थे, तो उन्होंने उन 7 वाणी में एक वाणी बोली, पूरा हुआ। और उस पूरे में सारे व्यवस्था की रीति विधि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ क्रूस पर पूरी कर दी अपने बलिदान के द्वारा। अब बलिदान की आवश्यकता नहीं थी, अब खतने की आवश्यकता नहीं थी, और इसी को पहले ही ये भविष्यवाणी यर्मिया के द्वारा की जा चुकी थी कि आने वाले समय में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के मनों का खतना करेगा। अब शरीर की खतने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मन की खतने की आवश्यकता थी, और वो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने सुसमाचार की सामर्थ्य में लोगों के जीवन में कर रहा था। लेकिन ये फरीसी कुछ लोग थे, व्यवस्था के ठेकेदार थे, ये अभी भी इन चीज को लेकर वाद विवाद कर रहे थे और लोगों के साथ करते हुए उनको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। पहले से तीन पद तक हम इस बात को, दो पद तक इस बात को देखते हैं, लेकिन तीसरे पद में तब उन्होंने विचार किया, ठीक है अब अंताकिया से हम लोग यरूशलेम जाएंगे और यरूशलेम में और भी जितने प्राचीन हैं, जितने लोग हैं, उनको इकट्ठा करेंगे और वहां पर एक सभा करके इस सारे विषय विचार विमर्श किया जाएगा, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरे पद में, अतः कलीसिया से विदाई पाकर वे फिनिके और सामरिया होते हुए सब भाइयों को गैर यहूदियों के हृदय परिवर्तन का विस्तार पूर्वक समाचार सुनाकर अत्यंत आनंद पहुंचा रहे थे। ठीक है, वे वापस हो गए, वो जाने लगे, समझाने लगे, लेकिन रास्ते में क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुना रहे थे। परमेश्वर का वचन, ये सुसमाचार कैसा सुसमाचार था या कैसा सुसमाचार है? पहली बात यहां पर लिखा हुआ है, गैर यहूदियों में, आने जातियों में हृदय परिवर्तन का विस्तार पूर्वक सुसमाचार सुना सुना कर अत्यंत आनंद पहुंचा रहे थे। कई बार आज भी जब हम लोगों को देखते हैं, जो लोग तरह तरह की बातों करते हैं, कहीं धर्मांतरण की बात करते हैं, कहीं इधर की बात करते हैं, कहीं उधर की बात, वो उन बातों को, गहरी बातों को नहीं समझते, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। ये तो सुसमाचार ये है कि ईसाई बनाना नहीं है, धर्म परिवर्तन करना नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा हृदय परिवर्तन का सुसमाचार है। हृदय कैसा मनुष्य? मनुष्य का हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें सब तो असाध्य रोग लगा हुआ है, उसके अंदर पाप ही पाप है, लेकिन सुसमाचार मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करता है। जो हृदय पाप में भरा है, जो जलन और डाह और ईर्ष्या में भरा हुआ है, जो द्वेष में भरा हुआ है, जिस पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उससे वो जीवन को छुड़ा करके वो जीवन को में प्रवेश कराता है। अगर हम दो एक स्थल को देखें, प्रेरित काम उसका 5 अध्याय उसके 20 पद में इस सुसमाचार के बारे में क्या लिखा हुआ है, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। पहली बात, सुसमाचार जीवन का संपूर्ण संदेश है, यह जीवन प्रदान करने वाला संदेश है। मनुष्य को केवल धर्म परिवर्तन कराने वाला नहीं है, मनुष्य की यह मिथ्या है, यह भूल है। कह रहा है कि जीवन का संपूर्ण संदेश, जीवन क्या है, मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों जीवन दिया है, जीवन की महत्वता क्या है, किस प्रकार से उसको अपने संसार में जीना है। पहली चीज वो जीवन का संपूर्ण संदेश है। 15:3 में हमने देखा था वो हृदय परिवर्तन का संदेश है। 16:17 में पौलुस के और हमारे पीछे आकर बार बार चिल्लाने लगी, हे मनुष्य के परम प्रधान के दास हैं, जो तुम्हें उद्धार के मार्ग का संदेश सुनाते हैं। ये सुसमाचार जीवन का संदेश है, ये हृदय परिवर्तन का संदेश है, ये उद्धार के मार्ग का संदेश है। अब तब हम उसको देखते हैं, जब ये समस्या थी तो क्या हुआ, 4 पद में, और जब वे यरूशलेम पहुंचे तो उनका स्वागत कलीसिया प्रेरितों तथा प्राचीनों द्वारा किया गया। तब उन्होंने वो सब कुछ कह सुनाया जो परमेश्वर ने उनके साथ किया था। परंतु फरीसी पंथ के कुछ विश्वासियों ने खड़े होकर कहा, उनका खतना कराना था उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने का आदेश देना आवश्यक है। अब यहाँ पर यरूशलेम में पौलुस भी आ गया, बर्नबास भी आ गया, पत्रस पहले से स्थान पे है, कुछ और भी प्राचीन है, यहाँ लिखा है कलीसिया इकट्ठी है, प्रेरित इकट्ठा है, प्राचीन इकट्ठा है, प्राचीन मतलब एल्डर्स, अब यहाँ पर इकट्ठा है। अब जब ये साथ मिलकर के उस कार्य का वर्णन करते हैं जो परमेश्वर कर रहा है, तो लेकिन वहां पर कुछ फरीसी पंथ के लोग थे। ये फरीसी कौन थे? ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते थे सबसे ज्यादा, और वो ये का बात को कह रहे हैं कि क्या करना है, खतना करना बहुत जरूरी है, बार 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 बार। और ये उन अन्य जाति से, जो अन्य जाति प्रभूमि से लोग विश्वास में आ रहे थे, उनको किसी ना किसी प्रकार से दबाव देकर परेशान कर रहे थे। ये सच है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और तब उन्होंने कहा, जब कर रहे थे तो मैंने पहले बताया कि किस रीति से समय पर था। ये लोग कहा ठीक है, अगर अन्य जाति लोग प्रभु में आ रहे ठीक है, आना चाहिए, मसीह बनना चाहिए, लेकिन पहले उनको खतना होना जरूरी है। अब खतने की जरूरी नहीं था, खतने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी लोग प्रभु में आ चुके थे। अब उसी विषय को लेकर के यहां पर ये चर्चा शुरू होती है। अब पहली सभा है जो छठे पद से है, प्रेत तथा प्राचीन इस विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। जब बहुत वाद हो चुका तब पत्रस ने खड़े होकर उनसे कहा, क्या कहा, भाइयों तुम जानते हो कि बहुत दिनों पूर्व परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुना कि गैर यहूदी लोगों के लोग मेरे मुंह से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। वो कह रहा है कि बहुत समय पहले परमेश्वर ने मुझे चुना है। पत्रस अपने चुनाव के बारे में बोल रहा है, कह रहा है, यह पत्रस का संदेश है। वो कह रहा है परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि लोग मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने। कौन सुने? गैर यहूदी सुने। जब हम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, 10वें 11वें अध्याय को प्रेरितकाम में, पत्रस कुरनेलियुस के यहाँ जाने के तैयार नहीं था, तो परमेश्वर ने दर्शन में होकर उसे बातें कही, उसको सिखाया, उसको निर्देश दिया, और तब पत्रस जाता है और कुरनेलियुस का जो परिवार अन्य जाति परिवार है पूरी रीति से वो परमेश्वर के वचन को सुन करके विश्वास लाते हैं और प्रभु के राज में शामिल होते हैं। वो कह रहा है कि चुना है ताकि लोग मेरे में से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। मेरे प्रियो, पत्रस बड़ी दृढ़ता से कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो वचन सुने और विश्वास करें। मेरे प्रियो, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, रोमियो उसका 10:17 पद में लिख, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पत्रस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है जातियों के बीच में। हम परमेश्वर के वचन को कान से सुनते हैं। आपने निरंतर परमेश्वर के वचन को सुना है। क्या सुना है? प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा उद्धार करता है ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? मनुष्य की स्थिति क्या है? मनुष्य तो पापी है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये प्रेरितों का प्रचार था, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था, ये प्रेरितों का प्रचार था, ये आज सुसमाचार का प्रचार है। मेरे प्रियो, मुझको और आपको यही लोगों को सुनाना है। और जितने लोग इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करते हैं, तो मैं अक्सर बोलता हूँ, कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से हम वचन को समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। तब आगे चल के कहता है 8वें पद में, और परमेश्वर ने जो हृदय को जानता है, वो कहना चाह रहा है, फरिश्तियों तुम इन जातियों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम इन जातियों से कह रहे हो कि इनको खतना करना जरूरी है, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास किया है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारी सेवा में, कलीसिया सेवा में, चाहे मंडली चलाते हो चाहे कलीसिया चलाते हो, अगर सुसमाचार का प्रचार नहीं, अगर लोग केवल दूसरी चीज पर विश्वास करते हैं, चाहे वो शायद पानी पर हो, चाहे तेल पर हो, चाहे केवल प्रार्थना पर हो, चाहे केवल चंगाई पर हो, और वचन उनके जीवन में नहीं है, तो बेकार है। हमारे सेवा में परमेश्वर का वचन प्राथमिक होना है, लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन कार्यकारी होना है, उनके मस्तिष्क को परिवर्तित करना है, उनके हृदय को परिवर्तित करना है, उनके विश्वास को परिवर्तित करना है। और यहाँ पर पत्रस कह रहा है परमेश्वर उन लोगों के मनों को जानता है जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से प्रभु में आए हैं, विश्वास किए हैं, वो मनों को जानता है। कह रहा है हमारी तरह उन्हें भी पवित्र आत्मा देकर उनके पक्ष में गवाही दी है। हमारी तरह, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया था, प्रेरित काम उसके 2 अध्याय में, जब ये लोग सब प्रेरित और महान लोग इकट्ठे थे, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, पवित्र आत्मा उंडेला गया और परमेश्वर ने इनको अनुभव दिया। तब आगे चलकर हम देखते हैं इन अन्य जातियों के ऊपर भी परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उंडेला। और तब कह रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें भी, उन्होंने केवल विश्वास किया था, खतना नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है और अपने पक्ष में उसने गवाही दी है। 9वां पद, इस प्रकार विश्वास के द्वारा उन्होंने हृदय को शुद्ध करके उसने उनमें से कोई अंतर नहीं रखा। विश्वास के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध करा है। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा उद्धार है। और तब आगे चल करके हम देखते हैं, आगे चल के फिर वो कहता है दसवें पद में, अतः चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसे ना तो हमारे पूर्वज और ना ही हम उठा सके, अब क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? अब उन पर जुआ ना रखो भैया, अब पुनः परमेश्वर ने उस खतने से उनको आजाद कर दिया, अब दोबारा तुम उनके जुआ ना रखो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ उठा लो, वो हल्का है। हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और मेरा जुआ उठा लो। मेरे प्रियो, यीशु का जुआ हल्का है। उसने उस जुए को, जो भारी जुआ था, जो व्यवस्था का जुआ था, हमेशा परेशान करने का, दबाव में रहने का, मुसीबत में डालने का, उससे आजाद किया है। अब पतरस कर रहा है, अब दोबारा उनके कंधों पे ये भार मत रखो, खतना की बात मत करो। मेरे प्रियो, आज भी सचमुच में बहुत सारी जगहों में तरह तरह की बात आती है। कई लोग पवित्र आत्मा को लेकर के लोगों के अंदर बाहर डाल देते हैं, कई तरह तरह से विचार, कई तरह तरह से शिक्षाएं आ जाती हैं, और हमें बहुत अधिक सावधान रहना है, सीखना और समझना है। कई लोग बाइबल से ही ऐसी शिक्षा को लेकर तोड़ मड़ोड़ कर रखते हैं और मनुष्य को बाध्यता में डाल देते हैं। मेरे प्रियो, दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो सिद्धांतिक रीति से विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा डूब का बपतिस्मा, जल में होना है। दूसरा, प्रभु भोज। ये दो विधियां परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में दी हैं। बाकी परमेश्वर ने अपने कलीसिया में आराधना का, खड़े होकर गाना ये गाइए, बैठ के गाइए, ये ना करिए करिए, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने आजाद रखा है। क्योंकि हर एक देश में, हर एक संस्कृति में, हर एक कल्चर में, हर एक प्रभुभूमि में अलग अलग तरह के लोग हैं, और कई बार लोग आज भी इसी तरह का बंधन में लोगों को डाल देते हैं। हमें सावधान रहना है किस प्रकार का जुआ हम लोगों पर रख रहे हैं। और वो कह रहा है सना करो, लेकिन खास बात क्या है? तब वो 11 पद में कहता है, परंतु हमें निश्चय है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार उनका। दो बातें, विश्वास के द्वारा उद्धार, अनुग्रह द्वारा उद्धार। प्रेरितों का काम उसका 13:39 पद में, इफिसियों 2:5-8 पद में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही पौलुस बार बार इस बात को कहता है कि हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, उद्धार प्राप्ति के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उसके कार्य विश्वास करना है, और उसका अनुग्रह हमें पापों से छुटकारा प्रदान करता है। ये उसकी दया, उसकी कृपा का फल है। सो यहाँ पर बार बार इस चीज को समझा रहे हैं। अब क्या होता आगे चलकर, 12 पद से लेकर, सारी भीड़ चुपचाप होकर बर्नबास और पौलुस द्वारा ये विवरण सुनने लिया। पौलुस और बर्नबास अपने जीवन की साक्षी और सेवा के बारे में बताते हैं। अब उसके बाद 13 पद में, जब वे बोल चुके तो याकूब ने उत्तर दिया। ये याकूब, ध्यान दीजिएगा, याकूब, ये याकूब वो नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में था। 12 शिष्य में जो याकूब था, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, वो तो बलिदान हो चुका था, वध हो चुका था उसका। प्रेतो उसके 12 अध्याय में, ये याकूब वो याकूब है जो प्रभु यीशु मसीह का स्टेप ब्रदर है, जो प्रभु यीशु मसीह के भाइयों में से था। प्रभु यीशु मसीह के बाद जब मरियम और यूसुफ का बाद में विवाह होता है, उससे जो अन्य संतानें उत्पन्न होती हैं, उनमें से याकूब एक है। और याकूब ने जब तक प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे, उस समय तक विश्वास नहीं किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद इन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने बाद अब ये यरूशलेम की कलीसिया का एक प्राचीन था, अगुआ था, और उसने खड़े होकर बहुत ही दृढ़ता के साथ उत्तर दिया है। और क्या कह रहा है? भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया, पौलुस ने बताया कि परमेश्वर ने अपने नाम के लिए बहुत दिनों पूर्व गैर यहूदियों में से एक प्रजा को चुन लिया। पतरस के बारे में, शमौन के 3 नाम है, पतरस है, शमौन है, कैफा है। उसने बताया कि ऐसे चुन लिया इस बात में से। अब आगे चल करके वो आमोस की पुस्तक में से एक भविष्यवाणी उसको वो क्लेम करता है, उसको उद्घोषित करता है, उसको कोट करता है 17:18 पद में, जहां पर आमोस के द्वारा परमेश्वर ने पहले से कहला दिया था, केवल आमोस के द्वारा नहीं बल्कि कई जगह पर ये वो स्थल को कोट कर रहा है कि किस प्रकार से आने वाले दिन में परमेश्वर अन्य जातियों के द्वारा अपनी महिमा कराएगा। और इसलिए उन सारी चीजों को प्रकट करते हुए तब 19 पद में कहता है, मैं इस निर्णय में पहुंचा हूं कि हम उन्हें दुख ना दें। किन लोगों को दुख ना दें? उन अन्य जातियों में से आए हुए लोगों को दुख ना दें, पर कुछ बात है जो उनको सीखनी है। अब यह मतलब नहीं है कि अगर अन्य जाति में से वो प्रभु में आ गए, विश्वासी बन गए, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, कलीसिया में जुड़ गए, तो उनको कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। इसको समझना है। कुछ चीजें हैं जिनको छोड़ना है उनको, और बार बार इस चीज को सिखाया, उन्हें खतरा जरूरी नहीं है, वो रीति विधि जरूरी नहीं है जो व्यवस्था की थी, लेकिन उनको उन चीजों को भी लेके नहीं चलना है जिनको पहले लेके चलते थे। क्या कारण था? वो कह रहे हैं गैर यहूदियों में से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तियों को अशुद्धताओं से, व्यभिचार से और गला घोटे पशुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। चार चीजें थी, वो कह रहा इन चीजों से वे अपने आप को दूर रखें। पहली चीज कह रहा मूर्तियों के सामने के भोजन से। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर इस चीज के वचन इसको सिखाता है, और कई बार हमारे दूसरे मित्रगण इस बात को नहीं समझते और वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमें समझना है कि अगर हम प्रभु में आ गए हैं तो हमें उन चीजों को छोड़ना है। पहली चीज कह रहा उन मूर्तियों के अशुद्धता से अपने आप को बचाना है। दूसरी चीज मृतक पशु के मांस से बचाना है। ये लोग उस प्रकार के लोग थे जहां इस सारी चीजों की बहुत ज्यादा प्रचलन पाया जाता था, और इसलिए परमेश्वर वचन को बार बार सिखाता है, ठीक है तुम आ गए, खतने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मूर्तियों को छोड़ दो, मूर्तियों की चीजों को छोड़ दो, मूर्तियों पर चढ़ावों को छोड़ दो, उन चीजों को छोड़ दो, और उसके साथ साथ अपने आप को किसी प्रकार से अशुद्ध ना करो। दूसरी बात वो कहता है कि मृत पशु के मांस को ना छुओ, उसको ना खाओ, लहू को ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में व्यवस्था में लिखा है कि मनुष्य का प्राण जो है लहू में पाया जाता है, और परमेश्वर के वचन में बार बार लहू को खाने पीने के लिए मनाई है। और तब उसके बाद चौथी बात है व्यभिचार से अपने आप को बचाए रखो। यहाँ परमेश्वर का वचन इस पर सिखाता है। वहां पर उस समय में ये बहुत ही गंदा जीवन उस संस्कृति या उस प्रचलन में था, जो विवाह से हट करके जीवन ऐसे व्यतीत करते। परमेश्वर के वचन में आरंभ से एक पुरुष एक स्त्री, जो पुरुष अगर दो स्त्रियों के साथ रहता है या जो एक स्त्री दो पुरुषों के साथ रहती है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो पाप है। परमेश्वर ने एक स्त्री एक पुरुष को ठहराया है, और ये आरंभ से पाप बढ़ता गया, और आज भी संसार में ये पाप फैला जा रहा है मेरे प्रियो। और इसलिए वो कहता है कि अपने आप को व्यभिचार के पाप से बचाए रखो, या फिर विवाह नहीं हुआ है फिर भी आपका अनैतिक संबंध है किसी साथ, साधा नहीं है, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना कर रखिए, इससे बच कर रहिए। तो ये कह रहा है कि इन चार चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है। 21 पद, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते आए हैं, और प्रत्येक सप्ताह के दिन आराधनालय में वही पढ़ी जाती हैं। ठीक है, व्यवस्था की बातें पढ़ी जा रही है, सब कुछ पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का जीवन ऐसे है। तो व्यवस्था मनुष्य के जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रही है, व्यवस्था मनुष्य के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पा रही है, व्यवस्था मनुष्य के मन को परिवर्तित नहीं कर पा रही है, व्यवस्था मनुष्य के जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रही है। ठीक है, कुछ रीति विधि पूरी कर ली उसके बाद वैसी है, आज भी है। मैं बार बार बोलता हूं कई नामधारी मसीह विश्वासी हैं, हम विश्वासी बन गए, बपतिस्मा ले लिया चर्च में, जहां चर्च के सदस्य हैं, लेकिन जीवन क्या है? क्या हमारे जीवन परिवर्तन है? हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देना है। हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध कितना है? हम अपने कार्य में इतने अधिक व्यस्त हैं, हमारे पास परमेश्वर के समय नहीं है, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के लिए समय नहीं है, व्यक्तिगत डिवोशन के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय नहीं है। बुधवार को बाइबल स्टडी है तो हमारा कुछ और काम है, क्योंकि काम व्यस्त है, पैसा कमाना है। कितने लोग ऐसे हैं, या सो रहे हैं, या कुछ और देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, क्यों नहीं वचन? हम मसीह हैं, विश्वासी हैं। धीरे धीरे कई विश्वासी धीरे धीरे नामधारी विश्वासी हो जाते हैं, और हमें नामधारी विश्वासी नहीं करना। परमेश्वर वचन कहता है तो गुनगुना मत हो, बला तो गर्म हो या ठंडा हो, और इसलिए हमें गुनगुना जीवन नहीं जीना चाहिए। कई बार जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चीज़ें नहीं दिखाई देती जो आत्मिक जीवन में होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। और मेरे और आपको सचेत होना चाहिए, हमेशा अपने आप को जांचना चाहिए, क्या ये लोग वो थे जो व्यवस्था को सुन रहे थे लेकिन फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं था? आपने सुसमाचार को सुना है, आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता होने का दावा किया है, आपने शायद बपतिस्मा लिया है, आप शायद किसी कलीसिया की सदस्यता भी ली है और शायद कई तरह की बातें कर, लेकिन क्या जीवन परिवर्तन है? आपका प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है? आपके परिवार में आपके पति पत्नी के साथ संबंध आपका कैसा है? आपके बच्चों से संबंध कैसा, कैसा आपका जीवन है, आपको देखना है किस रीति से। तब 22 पद से लेकर के आगे अब एक पत्र तैयार किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। लिखा हुआ 22 पद, जब पूरी कलीसिया सहित प्रेरित तथा प्राचीनों को ये उचित जान पड़ा तो अपने मध्य में से कुछ मनुष्य को चुनकर अर्थात बरसबा कहलाने वाले यहूदा और सिलास को, भाइयों में जो प्रमुख थे सिलास, आगे चल के इसका नाम सिल्वानुस है, ये एक रोमी नागरिक था, बहुत ही ज्ञानवान था, अंताकिया कलीसिया का ये यूनानी पृष्ठभूमि था और यूनानी पृष्ठभूमि होने के नाते, ज्ञानवान होने के नाते ये एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति था। वहाँ की जो जो सभा होती थी, जिस सभा में 70 लोग होते थे जो सारी चीज़ों के चुनाव करते थे रोमी शासन में, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था। लेकिन इसने सुसमाचार पर विश्वास किया था और सुसमाचार के लिए खड़ा भी हुआ था और आगे चल करके ये पौलुस का साथी बन जाता है और सुसमाचार प्रचार की यात्रा में पौलुस के साथ शामिल हो जाता है। सो ये था, लेकिन इन लोगों ने विचार किया कि इनके साथ क्या करें, उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। अब यरूशलम में है, वहाँ सभा हुई है। अब अंताकिया एक बहुत बड़ा नगर था, हम देख चुके हैं कि तीसरा सबसे बड़ा नगर है, शहर है ये, और बहुत सारे लोग हैं और एक प्रसिद्ध नगर है, बहुत व्यापार वहाँ पर है, धनी लोग हैं और कई लोग उस जगह पर बाहर से आते जाते रहते हैं क्योंकि व्यापारिक स्थानों में जितने लोग आते थे वहाँ पर अंताकिया में सुसमाचार सुनने का उनको अवसर मिलता था और इसलिए उन्होंने इसको एक केंद्र बना रखा था ताकि सुसमाचार स्पष्ट रूप से दिया जाए और वहाँ से दूसरे स्थानों में पहुँचा जाए। अब ये लोग अंताकिया भेजे जाते हैं। अब क्या होता है 23 पद से, उन्होंने उनके हाथ ये पत्र भेजा, बैठ करके उन्होंने पत्र तैयार किया। कुछ लोगों का विश्वास है, कुछ लोगों का मत यह है कि संभवतः यही समय था जब पौलुस ने गलतियों की पत्री को भी लिखा था, क्योंकि यही विवाद चल रहा था, व्यवस्था 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 गलतियों में, और इसीलिए वो व्यवस्था को बार बार देता है, एक्सप्लेन करता है कि व्यवस्था के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं है, व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं रहते हैं, और व्यवस्था को बहुत गलतियों में बहुत रीति से वो समझाता है, सिखाता है, क्योंकि ये समय परिस्थिति चल रही थी। अतः वो कहता है, प्रेदो तथा उन भाइयों की ओर से जो प्राचीन है, अंताकिया सीरिया किल्किया के भाइयों को जो गैर यहूदी में से हैं, नमस्कार। अब आसपास के और भी लोग हैं, ना केवल अंताकिया लेकिन आसपास के, जैसे मैंने बताया है, जब से हमने सुना है कि हम में से कुछ ने हमारे आदेश बिना अपनी बातों में से तुम्हें घबरा दिया, तुम्हारे मन को अस्थिर कर दिया। ये क्या करते फरीसी लोग, क्या करते, लोगों के मनों के घबरा रहे थे, लोगों के मनों को अस्थिर कर रहे थे। अरे तुमने विश्वास किया है, तुम्हारा तो खतना नहीं हुआ, तुमने कैसे उद्धार पा लिया, तुम कैसे मसीह पर विश्वास करे, तुम्हें पहले खतना करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे ऐसे फरीसी जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बनाते हैं लेकिन कई सारे लोगों के मनों को अस्थिर करते हैं। क्या कर रहे थे, उनके मनों को घबरा रहे थे, अरे तुम उनके साथ शामिल मत हो ना, तुम ऐसा करना, अगर खतना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और इस तरह से आज भी कई सारे लोग हैं, मुझे और आपको सावधान होना है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक आत्मिक व्यक्ति जो सचमुच में, जो हमारे सामने चारों तरफ की बातचीत आएंगी, बहुत कुछ होगा, हम सुनेंगे देखेंगे, लेकिन हम निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लेंगे और हम समझेंगे क्या ये चीजें वचन के अनुसार हैं। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति भी होता है और वो आके मुझे और आपके सामने खड़ा होकर कुछ कहे, लेकिन मुझे सोचना किया, ये जो आत्मिक व्यक्ति है जिस पर मैं बहुत गर्व करता हूं, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें कर रहा है? क्या जो कुछ कह रहा है, जो कुछ शिक्षा दे रहा है, जो कुछ समझा रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ निर्देश दे रहा है, जो कुछ सलाह दे रहा है, क्या परमेश्वर के वचन के दायरे में है? अगर वचन के दायरे में नहीं तो मुझे और आपको सचेत रहना है। और कितने लोग इसी तरह से आज भरमाए जाते हैं, और मेरे प्रियो, ये गलती किसी से भी हो सकती है। मुझे भी सावधान रहना है, आपको भी सावधान रहना है, मुझे सावधान रहना है मैं किस प्रकार से लोगों के साथ बातचीत करता हूं या किस तरह की सलाह देता हूं। मेरे प्रियो, तब वो कह रहे हैं 25 पद, एक मन होकर
हमको ये उचित जान पड़ा। अब ये अगवे क्या है? अगवे एक मन हुए हैं। ऐसी बातों को जो झूठ की बातें हैं, छल की बातें हैं, धोखे की बातें हैं, उनका सामना करने के लिए ये अगवे एक मन हो रहे हैं। आज कलीसिया में ऐसे अगो की जरूरत है जो समझ सके और जो सच्चाई के लिए, सही बात के लिए एक मन हो सके, जो भरमाए ना जाए, बहकाए ना जाए। अगर आप किसी कलीसिया में हैं, बहुत सारी कलीसिया इन दिनों में हमारे साथ जुड़ रही हैं और अगवे जुड़े हुए हैं, मैं सबसे बातचीत करना चाह रहा हूँ, न केवल सियोन चर्च लखनऊ में लेकिन हर जगह। मेरे प्रिय, अगर किसी भी स्थान पर परमेश्वर ने आपको अगुआ बना कर रखा है, आपको सोचना है किस प्रकार से आपके निर्णय कलीसिया के लिए एक मन होकर मजबूत बनाने के लिए, झूठी शिक्षाओं से सावधान होने के लिए, तोड़ बड़ों से सावधान होने के लिए, आपको एक साथ होकर खड़े होने के लिए तत्पर और तैयार करता है। ये क्या कर रहे थे? ये लोग बिगाड़ लगते, लेकिन उन्होंने क्या निर्णय किया? हम एक साथ होकर ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? मन होकर। ये उचित जान पड़ा कि अपने प्रिय बरनबास तथा पौलुस के साथ कुछ व्यक्ति को चुनकर तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। ये कैसे अगुए? ऐसे अगुए जिनकी साक्षी है। आज सब अगुए बनना चाहते और घमंड करते हैं। अगुए बनने पर घमंड नहीं है, अगवे बनने पर जिम्मेदारी है। जितनी अधिक जिम्मेदारी हमारे पर बढ़ती चली जाती है, उतना अधिक हम प्रभु परमेश्वर सामने उत्तरदायित्व होते चले जाते हैं, उतना अधिक हमें परमेश्वर सामने उत्तर देना होगा। और मुझे और आपको सावधान रहना है। इनकी गवाही क्या है? वो कह रहा है ये ऐसे अगवे हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राण जोखिम में डाल दिए हैं, सुसमाचार की रक्षा की है, कलीसिया को बचाया है, संभाला है, झूठी शिक्षा से सावधान रहे हैं, हर एक गलत चीज से अपने आप को खड़ा किया है। ऐसे लोग हैं ये, हम जानते हैं इनके बारे में, बर्नबास के बारे में जानते हैं। तब आगे चलकर 27 में, इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है जो स्वयं ही अपने मुंह से इन सारी बातों का समाचार देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तथा हमको ये उचित जान पड़ा। किसको? दो जने यहां पर, केवल हमको नहीं लेकिन पवित्र आत्मा को। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, जो कुछ भी सलाह दे रहे हैं, जो कुछ भी आपको सिखा रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा शामिल है। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पवित्रता का, पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, झूठ छल धोखा उसका आत्मा नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार मैं अपने नाम के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए झूठ का, छल का, धोखा का सबका सहारा ले सकता हूँ, लेकिन क्या उसमें पवित्र आत्मा शामिल है? यहाँ पर लिखा पवित्र आत्मा तथा हमको योचित पान। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के कार्य में, हमारे जीवन के निर्णयों में, हमारे जीवन के समस्याओं को समाधान करने में, सारी चीज में ये विवाद कलीसिया के अंदर उत्पन्न हो रहा था, जो खतना को लेकर था और अन्य जातियों के लिए मुन्नाई का कारण बन रहा था। और मेरे प्रिय, ये फरीसी लोग जो अपने आप को ठेकेदार समझते थे, कुछ आकर मिल गए थे, ये लोग सोचते थे हम ही सब कुछ जानते हैं और ऐसा गड़बड़ उत्पन्न कर रहे थे। हमें लोगों को पहचानना है, हमें लोगों को जानना है। इन दिनों में जो प्रेरित काम की सीरीज चल रही है, हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से वर्तमान में बहुत सारी कलीसियाएं संघर्षों में से होकर जाती हैं, और हमें इस बात को वर्तमान में भी इन वचनों को समझना है, सीखना है और अपने जीवन को उनके साथ ले चलना है। ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़कर तुम पर और कोई बोझ ना डालें। कौन सी बात? वही बात जो पहले कही थी, दोबारा रिपीट कही गई है 29 पद कि मूर्तियों के बलिदान पर चढ़ाई वस्तुओं को लहू से, गला घोटे हुए मांस से तथा व्यभिचार से अपने आप को बचाए रखो। इनसे बचे रहो तो तुम्हारा भला होगा। मेरे प्रियो, उन अनिश्चित बातों से, उन चीजों से जो हमारे जीवन में पहले संसार में थी, हम प्रभु को नहीं जानते थे, अन्य जाति रीति से चलते थे, उसमें थे, हमने उनको अपने जीवन में थामा था, लेकिन अब उनको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन का मार्गदर्शन में प्राप्त करना है, वचन की रीति से हमें चलना है। कई बार हम जो खास से हमारे बीच में जो हमारे वो भाई बहन है जो अन्य जाति भूमि से प्रभु में आते हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें कठिनाई की रहती हैं और वो समझ नहीं पाते किन को उनको छोड़ना है, किन चीजों को उनको लेके चलना है। जरूर कुछ चीजें लेके चल सकते हैं, लेकिन कुछ है जो स्पष्ट रूप से, जो उन चीजों से बिल्कुल स्पष्ट जुड़ती हैं, हमें सावधान रहना है और ये बैठकर विचार करना चाहिए कि कौन सी चीजें जो उस मूर्ति पूजा की ओर संकेत करती हैं, कौन सी चीजें जो मरे हुए मांस की ओर संकेत करती हैं, कौन सी चीजें जो व्यभिचार की ओर संकेत करती हैं, व्यभिचार शरीर को, मन को, मस्तिष्क को, सब कुछ को अशुद्ध अपवित्र करता है। और मेरे प्रियो, इस बात से हमें सावधान रहना है। तब 30 पद से लेकर के 35 पद तक हम अंतिम में देखते हैं किस रीति से अब ये सब कुछ हुआ। वे सब विदा होकर अंताकिया गए और वहां सब बुलाकर उनको वो पत्र दिया। जब वे पढ़ चुके, अब ये पत्र उनको दिया, तब उससे प्रोत्साहन पाकर अति आनंदित हुए। अब इस पत्र ने उनको क्या कर दिया, इन लोगों को प्रोत्साहित कर दिया। प्रोत्साहित हुए, आनंदित हुए, दृढ़ के गए, शांतिपूर्वक वे विदा हुए। चार चीजें यहां पर। पहली बात, उनको सही शिक्षा पहुंच गई। अब ये लोगों का निर्णय पहुंच गया, भाई ये निर्णय है ठीक है, खतने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको खतने के साथ साथ इन बातों को इनको ध्यान रखना है। ये जो आ रहे हैं इनको ये चीजें नहीं करनी है। किसी चीज से अलगाव करना है, कुछ चीज को छोड़ना है, उनसे अपने आप को अलग करना है। प्रभु अनुग्रहकारी है, अनुग्रह से उद्धार हुआ है, विश्वास से उद्धार हुआ है, लेकिन उस अनुग्रह में और उस विश्वास में कुछ बातें जिनसे इनको अलग करना है। और पौलुस इसलिए आगे चल करके बार बार उन बातों को वर्णन करता है जिनको विश्वास में आने के बाद पुराने जीवन की बातों को छोड़ करके अलग करते हुए नए रीति से आगे जीवन को व्यतीत करना है। वो बहुत बार बार उन शिक्षाओं को देता है। पहली चीज, उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया। दूसरी बात, यहूदा और सिलास भी स्वयं नबी होने के नाते भाइयों को लंबा उपदेश देकर प्रोत्साहित और दृढ़ किया। इन्होंने भी लंबा उपदेश देके एक अच्छी शिक्षा दे दी। ना केवल पत्र को पढ़ा, लेकिन पत्र को समझाया, शिक्षा दी, भाई सुन लो, तुम जो प्रभु में आ रहे हो, इसके द्वारा तुमने विश्वास किया है, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, अब तुम्हें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें नहीं, तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन इन चीजों से सावधान रहना है। खतने की जरूरत नहीं, पर इन चीजों को तुम्हें छोड़ना है। कैसे तुम प्रभु में आगे बढ़ते हो, कैसे तुम्हें फरीसियों से सावधान रहना है, कैसे उन झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है, कैसे इन छल और धोखे से सावधान रहना है, कैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें पवित्र जीवन हो, तुम्हारा मसीह में जीवन हो, और किस प्रकार से तुम सही रीति से आगे बढ़ाओ। 33 पद, कुछ दिन वहां रहे, रहने के पश्चात भाइयों को शांति पूर्वक उनके भेजने वालों के पास उन्हें विदा किया। परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। पौलुस तथा बरनबास भी अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत लोगों के साथ वे प्रभु के वचन की शिक्षा देते और उसका प्रचार करते रहे। शिक्षा का काम निरंतर होता रहा। क्या हो रहा है, ये डिसाइपलशिप है, ये शिष्यता का। जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें शिष्य बनाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिष्यता का कार्य खत्म नहीं होता। आज भी प्रभु की दया से मैं प्रभु की शिष्यता में बढ़ता चला जा रहा हूँ, और बढ़ने की जरूरत है। जब मैं उसके वचन को सुनता हूँ, सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, दूसरे सुनता हूँ, किसी रीति पुस्तक से पढ़ता हूँ, या कोई मैसेज सुनता हूँ, कोई भी, वो मेरे लिए शिक्षा काम है। आपके लिए भी शिक्षा की जरूरत है। कितना अधिक ललायत है। प्रभु का धन्यवाद उन भाई बहनों के लिए, उन जवानों के लिए जो ललायत रहते हैं संडे और वेंसडे को हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम प्रत्येक के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन कितने ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं शिक्षा की चाहना, नहीं। बात बड़ी बड़ी करेंगे, कौन है ये? नामधारी विश्वासी है। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। और सावधान रहिए मेरे प्रियो, हम ढील ना पड़े। शिक्षा और प्रचार का कार्य करते रहे। मेरे और आपके जीवन में निरंतर शिक्षा की जरूरत है। मेरे और आपके जीवन में निरंतर परमेश्वर के प्रचार की जरूरत है। चाहे हम कितने व्यस्त हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की शिक्षा की चाहना नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ या भाइयों से कहता हूँ, कम से कम आपको 2 या 3 पेज आपको जरूर पढ़ने चाहिए। आप कौन सी किताब इन दिनों पढ़ रहे हैं? पुस्तक को पेपर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई स्पिरिचुअल बुक आप पढ़ रहे हैं अपने जीवन में? अगर नहीं पढ़े तो कैसे आप आत्मिक जीवन बढ़ेंगे? समय नहीं। शायद आप काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आपकी गाड़ी में एक किताब रखी हुई है, समय मिलता है, बैठे रहते हैं, आप उसके साथ बैठकर 2 मिनट उस किताब को पढ़ सकते हैं। समय का आप सदुपयोग करें। वो क्या करेगा? आपको शिक्षा प्रदान करेगा, आप बढ़ते चले जाएंगे। मेरे और आपको हर एक को शिक्षा की जरूरत है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। सो ये कलीसिया में ये स्थिति थी। अब यहाँ पर कलीसिया और अधिक दृढ़ हुई है, सुसमाचार और अधिक दृढ़ हुआ है, प्रभु का प्रचार और अधिक बड़ा है, और लोग और अधिक मजबूत होकर के अब वो दीवार जो है, जो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में और ढलती चली जा रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा दीवार ढाली गई थी, लेकिन अब उनके मस्तिष्क के विचारों की दीवारों को ढाला जाना है, जो उन मस्तिष्क के विचारों ने उस बात से बाध्य कर रहे थे कि व्यवस्था के अनुसार खतना किया जाना है। उस मस्तिष्क की विचार की दीवार को ढाया जाना था। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस 15 अध्याय में हम उस दीवार को ढलते हुए देखते हैं। अब इन लोगों के लिए और अच्छा है कि परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रभु पर विश्वास करके वो और अधिक आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। मेरे प्रियो, अंतिम में प्रश्न यह है, किस रीति से आज मेरे और आपके जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य है। मैं अक्सर एक उदाहरण को सुनाता हूँ, बाइबल से बहुत क्लोज है। एक भिखारी था, अपने इधर उधर घूमता, और एक बार उसको किसी धनवान ने दावत दे दी। अपने नौकर से कहा, फलाना जो भिखारी है उसको नहलाओ धुलाओ सब कुछ करो, और दलाने दुलाने के बाद उसको अच्छी तरह से नए कपड़े पहनाओ सब कुछ करो, और उसको लेकर आओ, कल शाम को उसको मेरे यहाँ दावत करनी है और रात में भी उसको यही रहना है। उस नौकर ने जाके भिखारी से बताया, कल तुम्हें साहब ने बुलाया है दावत के लिए। भिखारी बहुत खुश हो गया, उसका ठीक है तुम नहाओ धो ये कपड़े दिए कपड़े पहनो सब कुछ करो। उसने सब कुछ बदल लिया, कपड़े पहन लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो उसके पुराने कपड़े फटे कपड़े थे उसने एक पोटली बांधी और पोटली बांध करके अपने बगल में दबा ली। जब वह महल में आया, उस घर में आया जिस घर में दावत थी, और वो दावत के लिए बैठा था लेकिन अपनी पोटली को बार बार छिपा रहा था, मालिक से छिपा रहा। लेकिन जब उस मालिक ने देखा ये क्या है, उसने कहा ये मेरे कपड़े हैं। कौन से कपड़े हैं? उसने कहा ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैं पहनता था। मालिक ने कहा तुमको तो नए कपड़े दिए गए थे। क्या लगा? जी हाँ, मुझे नए कपड़े मिले, मैंने नए कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं इन पुराने कपड़ों से बहुत प्यार करता हूँ, इनको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। मालिक ने कहा या तो ये कपड़े छोड़ो या मैंने जो दिए हैं तुम्हें उसको छोड़ो। मेरे प्रिय, कई बार हम इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। हम प्रभु में तो आ जाते हैं लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को लेके चले रहते हैं। पुराना स्वभाव है, पुराने आदतें, पुराने रीति विधियाँ हैं, पुरानी चीज़ें जो गांव की चलती आ रही हैं या अन्य जाति पृष्ठभूमि चलती आ रही हैं, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर परमेश्वर चाहता है जब हमें धार्मिकता के वस्त्र को पहनाता है तो चित्रे और पुखरे वो सब कुछ अलग हो जाए। इनसे कहा गया था तुम उन पुरानी चीज़ों को मत करना। कौन सी चीज़ें जो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है जिसको आप ले कर चल रहे हैं, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, आपकी आदतों में, आपके व्यवहार में, आपके कार्य में, जिसको आप लेके चल रहे हैं आप छोड़ नहीं पा रहे। काश प्रभु मुझसे और आपसे बातें करें, आप पश्चाताप कर सकें, प्रभु से क्षमा मांग सकें और उसको अलग कर सकें, और तब पूरी धार्मिकता के साथ, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार जो है उसके विश्वास और उसके अनुग्रह द्वारा है, उसको लेकर आप आगे बढ़ें, तब आप परमेश्वर की शिक्षा में और उस प्रचार में आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आई एम